प्यारे साथियों नमस्कार। आज 11 अक्टूबर 2019 के इस AFEIS के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस बीच में एक सप्ताह के गैप के बाद आज हम लोग फिर से मुख्य परीक्षा को आधार बनाकर अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में बातें करने जा रहे हैं। और उसके पीछे एक बहुत ही सोचा समझा कारण था और सिंपल सी बात थी मित्रों, मुझे ये लगा कि बीच में जो खासकर करंट अफेयर्स की दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसकी चर्चा कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर वह गैप आ जाता है तो बहुत सी घटनाएं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कहीं ना कहीं उनका लिंक हम सबसे मिस हो जाता है। इसलिए जानबूझ करके मैंने शुरू में, आपको ध्यान होगा कि 4 डेली ऑडियो लेक्चर केवल मुख्य परीक्षा को आधार बना करके ही दिए थे, फिर हम लोगों ने एक सप्ताह का गैप लिया है और अब फिर से हम लोग मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे। लेकिन अब जो मैं बातें करूंगा वो पहले की बातों से थोड़ी भिन्न होंगी, इस मायने में कि अभी तक तो मैंने केवल आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि देखिए, अगर आपको सच में सिविल सर्वेंट बनना है, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, तो आपको जो तैयारी करनी होगी वो मुख्य परीक्षा की ही करनी होगी। पता नहीं मेरी इस बात पर आप कितना यकीन कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, इसकी आपको पूरी छूट है। अब मैं जो बातें करूंगा वो हमारी जो मेन एग्जामिनेशन के पेपर्स रहे हैं उन पेपर्स का मैं आपको विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहा हूं। हर एक एक पेपर का हम लोग विस्तार के साथ विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पेपर किस तरीके का था, उसमें प्रश्न किस तरीके के पूछे गए, पिछले साल के जो प्रश्न थे उनकी तुलना में इस बार के प्रश्न सरल थे, कठिन थे, किस तरह से स्टूडेंट को इसकी तैयारी करनी चाहिए, किन किन प्रश्नों में कौन कौन सी कठिनाइयां थी, कैसे स्टूडेंट को उलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या सच में वहां उलझाने की कोशिश है या स्टूडेंट अपने आप उलझ रहा है और क्यों नहीं स्टूडेंट समझ पा रहा है, यानी कि उस प्रश्न पत्र से संबंधित जितने भी उलझने हो सकती हैं, मतलब मेरी अपनी सोच के आधार पर उन सबको सुलझाने की कोशिश मैं करूंगा। देखिए, यहां जो मैंने कहा अपनी सोच के आधार पर, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं एज ए स्टूडेंट इसके बारे में सोचूं। मैं सच पूछिए तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की बातें करता हूं तो अपने आप को आपकी जगह पर ले जाता हूं कि स्टूडेंट का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है किस तरीके का है, वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से तैयारियां करता है, उसके दिमाग में किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। सच पूछे तो डेली ऑडियो लेक्चर के मेरे एक एक टॉपिक पर कही गई बात का जो निर्देशन होता है, जो दिशा निर्धारण होता है, वो यही होता है कि मैं आप सबकी मानसिकता में उतर कर और वहां से प्रश्न लेकर आऊं और फिर उन प्रश्नों के उत्तर में डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। तो इनफैक्ट ये जो उलझने हैं ये मेरी अपनी उलझने नहीं है, सच पूछे तो ये आपकी ही उलझने हैं जिन्हें मैं यहां सुलझाने की हर संभव कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक बात और है कि हो सकता है कि कुछ बातें छूट भी जाएं। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि आपके जितने भी प्रश्न थे उन सबके उत्तर मैंने दे दिए हैं। तो यहां मेरी रिक्वेस्ट है और वो ये कि जहां भी आपको लगता है कि इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको चाहिए, नहीं दिए गए हैं, नहीं मिल पाए हैं, तो आप मुझे बाकायदे मेल कर सकते हैं। मैं उन्हें बाकायदे अपने डेली ऑडियो लेक्चर में शामिल करते हुए उत्तर उनके आप सबको प्रोवाइड करूंगा। मैं ये जानता हूं कि भले ही वह प्रश्न एक ही स्टूडेंट का क्यों ना हो, लेकिन वह बेसिकली बहुत से स्टूडेंट का प्रश्न बन जाता है, तो इसके लिए आप कोई संकोच न करें, प्लीज मुझे बताएं। क्योंकि आधी अधूरी तैयारी, या यूं कह लीजिए कि मैं अगर आपको आधी अधूरी बात बताता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आधी अधूरी तैयारी से सफलता पूरी मिलनी नहीं है और आधी अधूरी सफलता जैसी कोई चीज सिविल सर्विस में होती नहीं है। इसलिए प्लीज आप मेरी इतनी मदद करें, चलिए मैं यही कह रहा हूं कि आप ऐसा करके मेरी ही मदद कर रहे होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं निबंध के पेपर से। दोस्तों, ये जो निबंध का पेपर है ये बहुत मजेदार पेपर है, बहुत सरल पेपर है, लेकिन बहुत कठिन पेपर है। अब आप कहेंगे कि ये पहली क्यों बुझाने लगे आप, बहुत सरल पेपर है, बहुत कठिन पेपर है, बहुत मजेदार पेपर है, क्या मतलब हुआ इसका? दोस्तों, इसका मतलब है, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, देखिए सरल क्यों है, आप जब निबंध में पूछे गए विषयों को पढ़ेंगे, दिए गए टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में क्या भाव उठता है, क्या विचार उठता है, आप खुद मुझे बताइए। आपको क्या नहीं लगता है कि अरे ये तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, सरल सा विषय है, इस पर तो हम लिख लेंगे, अरे इस पर तो हमने सुना भी है, अरे इस पर तो हमने पढ़ा भी है, अरे इसमें क्या रखा हुआ है? क्या आपके दिमाग में इस तरह के विचार नहीं आते? चलिए मैं आपको कुछ पढ़ करके सुना देता हूं जो अभी 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। आप अब अपने को टेस्ट करके देख लीजिए कि आपके कौन से विचार पैदा हो रहे हैं, किस तरह के विचार पैदा हो रहे हैं। सेक्शन, दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में पूछा गया है, विवेक सत्य को खोज निकालता है, यानी कि जो हमारा विजडम है, जो विवेक है, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो सत्य की खोज कर लेता है, सच क्या है वो जान लेता है। अब आप बताइए कि जब मैं कह रहा हूं कि विवेक सत्य को खोज निकालता है, तो क्या आपकी समझ में नहीं आया? देखिए, जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मैं कहूं कि फर्टिगेशन क्या होता है, अगर आपने फर्टिगेशन के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, भले कितना भी सरल क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए तो वो कठिन हो गया ना। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, विवेक सत्य को खोज निकालता है, तुरंत आपके दिमाग ने कहा हाँ यार इसमें क्या है, ये तो सही ही तो कहा जा रहा है। या चलिए मैं दूसरा टॉपिक आपको बता देता हूं जो पूछा गया विषय है, मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसा मानवता का होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा आपको उलझन वाला लगेगा, थोड़ा सा सोचने में टाइम लगेगा, लेकिन आप इसके बारे में भी कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे। तीसरा है, व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। बेस्ट फॉर ए इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। ये तो आपको और भी सरल लगा होगा, ऊपर के दोनों की तुलना में सरल लगा होगा कि ठीक है, सही बात है कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, मैं चाहता हूं कि मैं मनमानी सड़क पर गाड़ी चलाऊं, जहां मेरा मन करे मैं वहां चलाऊं, ठीक है, ये मेरे लिए तो बेहतर हो सकता है क्योंकि मैं नौसिखिया हूं। लेकिन समाज के लिए पता लगा कि दूसरे लोग नहीं चला पा रहे हैं सड़क पर, या एक्सीडेंट हो रहा है, मैं टक्कर मार रहा हूं, तो समाज के लिए तो ठीक नहीं हुआ ना। यानी कि यहां दिखाया है कि जो व्यक्तिगत हित होते हैं, जरूरी नहीं कि वो सामाजिक हित का ही पोषण करते हो। तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये भी तो सरल ही है, इसके ऊपर भी लिखा जा सकता है, ऐसी क्या बात है। फिर आखिरी जो चौथा है, मतलब सेक्शन वन में चार होते हैं, उसको सुनने के बाद आपको और सरल लगेगा। ये जो टॉपिक है, देखिए क्या है, स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। इंग्लिश में पढ़ देता हूं, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। सक्सेस के बारे में तो आप लोगों ने पता नहीं कितने ग्रंथ पढ़ डाले हैं, और यूट्यूब तो उठा करके देखिए तो सक्सेस का मंत्र हर कोई दे रहा है, जिसको देखिए वही आपको सफलता के मंत्र दे रहा है। और मजेदार बात है कि उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए, लेकिन आपको बता रहे हैं कि नहीं, नहीं सफल होने के लिए देखो ये करो। ठीक है, बता सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि हम जो बता रहे हैं वो हमने भी किया हो, लेकिन बताते वो सही ही है। मतलब ऐसा मत समझिएगा कि मैं कोई व्यंग में कह रहा हूं, बताते वो सही है, बात सही कह रहे हैं। ये बात अलग है कि वो खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाए तो हम दूसरे को भी ना बताएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात का अन्यथा ना ले। तो अब आप देखिए कि मैंने आपको चार टॉपिक बताए, कि आपको सच में ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ये चार टॉपिक में मैं किस पर लिखूं? आपके सामने धर्म संकट पैदा हो गया है, क्योंकि इस पर भी मैं लिख सकता हूं, इस पर भी लिख सकता हूं, इस पर भी लिख सकता हूं। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं किस पर लिखूं, प्रॉब्लम है कि मैं किस पर ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिख सकता हूं, क्योंकि मैं सब पर लिख सकता हूं। तो क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह सरल है? ये सरल है दोस्तों। जो सेक्शन बी में जो पूछे गए हैं, सेक्शन बी में भी जितने टॉपिक पूछे गए हैं वो बहुत सरल टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है। चलिए मैं मेरा डेली ऑडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, एक विषय को लेकर के पूरी तरह से आपको जानकारी देगा। इस बात को ध्यान में रख करके मैं ये जो चार क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन बी में, क्वेश्चन क्या है, मतलब टॉप विषय दिए गए हैं, इनके बारे में भी आपको बता देता हूं। और आप देखिए कि इनको सुनने के बाद आपके दिमाग में किस तरह की प्रतिक्रिया होती है, प्लीज ऑब्जर्व दैट, उसको आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, तभी आप सही मायने में अपने आप को समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि पेपर को समझना तो जरूरी है ही, लेकिन अपने को भी समझना बहुत जरूरी है। किसी भी मायने में पेपर को समझने से कम जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को भी समझे, तभी तो आप अपनी तैयारी के स्तर को माप सकेंगे कि मैं किस लेवल पर हूं और मुझे उस लेवल तक पहुंचना है। किस लेवल तक पहुंचना है ये तो आप जानते ही हैं। जो पार्ट बी है, पार्ट बी में जो पहला क्वेश्चन है, सीरीज में फिफ्थ हो जाएगा, दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आसपास नहीं बल्कि अपनी अनेक संस्कृतियों और विभिन्न पहचानों के ताने बाने से बने हैं। ये कठिन क्वेश्चन है, कठिन विषय है। साउथ एशियन सोसाइटीज आर वीवन नॉट अराउंड द स्टेट बट अराउंड देयर प्लूरल कल्चर्स एंड प्लूरल आइडेंटिटीज। साउथ एशियाई, दक्षिण एशियाई जो देश है, जिसमें देखिए कि हमारा भारत भी है, उसका जो समाज बना है, उस समाज को राज्य ने नहीं बनाया है, बल्कि उनकी जो अपनी सांस्कृतिक विधियां रही हैं उनसे वो बना हुआ है। तो ये एक कठिन क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रखी है उनके लिए यह शायद कठिन नहीं हो। जिन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, जो पॉलिटिकल साइंस में आता है, शायद उनके लिए भी ये उतना कठिन न हो, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स के लिए ये कठिन हो सकता है। अब आपके दिमाग में क्या प्रतिक्रिया आई है आप ही जाने, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, उसमें परेशान होने की क्या बात है। अभी तीन और है ना, अब तीन को सुनिए, एकदम आपके सामने फिर वही प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी कि इन तीनों में से हम किसको करें। देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है या सेक्शन बी का दूसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण है। बताइए, कोई क्वेश्चन है? आपको नहीं लग रहा है कि सीधे सीधे ये प्रश्न अगर जनरल स्टडीज के पेपर में पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो निबंध में पूछा जाना चाहिए था, जनरल स्टडीज में कैसे पूछा गया? आप नहीं कहेंगे। इसका मतलब है कि जो आप जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं तो यह निबंध की तैयारी हो गई। इंग्लिश में है, निग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडियन आर रीजन इन इंडिया आर रीजन फॉर इट्स बैकवर्डनेस। आपको लगेगा कि बिल्कुल लिखा जाना चाहिए, इस पर तो मैं लिख सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। ये मीडिया के ऊपर है, हर साल कम कम ओबेस मीडिया पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बायस्ड मीडिया इज ए रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। मीडिया पर आप देखते हैं कि जनरली अखबारों में भी समय समय पर आता रहता है कि उसको क्या कहते हैं, जेल में डाल दिया गया और उसके ऊपर ये हो गया और फलाने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो मीडिया और सत्ता का जो संघर्ष है वो लगातार आपको अखबारों में कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलता रहता है। तो यहां पर दिया है, पक्षपातपूर्ण मीडिया वास्तविक खतरा है लोकतंत्र के लिए। तो ये जो चौथा स्तंभ कहा गया है, इसके ऊपर तो आप लोग पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे होंगे, आठवीं के बाद से तो शायद मीडिया पर निबंध लिखने के लिए आते ही रहता है, तो आपको सब मालूम है। तो आपको लगता है कि यार इसको भी किया जा सकता है। फिर आखिरी है आठवां और इस सेक्शन का चौथा, कृत्रिम बुद्धि का उत्थान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भविष्य में बेरोजगारी अथवा पुनः कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार के सृजन का अवसर। राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी थ्रू रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। बहुत सरल, लेकिन किसके लिए? जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इतना सरल है कि वो इसी को ही लिखना पसंद करेंगे, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो इतना जानते हैं, उनकी पकड़ इतनी अच्छी है कि इसके माध्यम से बहुत अच्छे से अपनी बात को रख सकेंगे। लेकिन जो सामान्य स्टूडेंट भी है, देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपके जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर का हिस्सा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साइंस, उसमें दोनों ही आते हैं, तो आपको भी इतनी तो जानकारी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि आप इस निबंध को हैंडल कर लें। लेकिन चलिए, जो भी आप अपने लिए चुनना चाहें, तो सबसे बड़ी बात देखिए जो मैं खासकर यहां कहना चाह रहा हूं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में, वो ये कि जो निबंध का पेपर है अपने आप में बहुत सरल होता है, और मैंने अभी यही समझाने की आपको कोशिश की है। अब इसका सेकेंड पार्ट है कि कठिन होता है, चुनौतियों से भरा हुआ है। तो मित्रों, अब समय मुझे बार बार इशारा करके ये कह रहा है कि इसकी चर्चा आप नेक्स्ट डेली ऑडियो लेक्चर में कीजिएगा, तो मुझे लगता है कि अब मुझे समय की बात माननी चाहिए, उसके आदेश का पालन करना चाहिए। तो मित्रों, अब मैं आप सबसे भी आदेश लेता हूं, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे भी आज के डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की अनुमति दें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।